हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 11 12 13 14 15 एंड 16। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्वद्भवस्था न निरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिना अन्तर्भवाय नुपलक्ष्यवर्त्मने भूयो नमः सत् विजिनच्यते सता असंभवाय खिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहरस्य आश्रये व्यवस्थितानां अनुमिद्धाशुषे यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषाम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होणा द्रपुलिंद पुल्कषा आभीर शुंभा यवनाखसादया येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदतां भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणनशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृत्लङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय छे जिसका शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि, जिसमें ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के विराट स्वरूप के विषय में बता रहे हैं। और आज श्लोक नंबर 11 में भगवान के अद्भुत माया के विषय में कि जब पूरा संसार जलमयी हो जाता है, प्रलय हो जाता है, तो संपूर्ण जीव किस प्रकार से भगवान के उदर के अंदर समाहित हो जाते हैं, वहीं पर स्थानांतरित होने के बाद पुनः जब सृष्टि की रचना होती है तो समस्त जीव पुनः से वहां से प्रकट होते हैं। ये किस तरह से भगवान ये सब भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, कभी प्रकट होते हैं कभी अप्रकट होते हैं, उसके विषय में बहुत ही सुंदर आज बता रहे हैं। कृपया मेरे साथ साथ इन पवित्र शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं
अव्यक्तरस सिंधूना भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसपदम्। अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसपदम्। अव्यक्त रस सिंधु नाम, अव्यक्त मतलब निर्विशेष पहलू, रस सिंधु नाम मतलब जल के सागरों तथा महासागरों का, जब पूरे संसार में केवल जलमय ही जलमय हो जाता है और सारे भूत जो होते हैं भौतिक जगत में सारे जीव जो हैं उनका क्या होता है, भूतानाम निधनस्य च, भूतानाम मतलब भौतिक जगत में जन्म लेने वाले जीवों का निधनस्य संहार हो जाता है। तब वो सारे जीव कहाँ जाते हैं, उदरम विदितम पुंसो, उदरम मतलब उनका पेट, विदितम यानी बुद्धिमान लोगों द्वारा, पुंस महापुरुषों का, हृदयम मनस पदम, हृदय मतलब हृदय, मनस अर्थात सूक्ष्म शरीर का, पदम यानी स्थान। तो उनका जो भौतिक शरीर है उनका शरीर वो तो लय हो जाता है और सारे जीव आत्माएं जो होती हैं वो भगवान के उदर में और उनका जो सूक्ष्म शरीर है उनके हृदय में स्थानांतर हो जाता है। अनुवाद देखिए, भगवान का निराकार पहलू महासागरों का आश्रय स्थान है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का आश्रय स्थान है, बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता 8.17 एंड 18 में कहा गया है कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 युगों के 1000 युग के तुल्य प्रत्येक 4,30,00,000,000 वर्ष का होता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण 8.17 में कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंत्रम अहर्यत ब्रह्मणो विदु। सहस्त्र यानी 1000 युग पर्यंत्र, जब 1000 चतुर्युगी होती है तो अहर्यत ब्रह्मणो विदु, ब्रह्मा जी का एक दिन गुजरता है जब 1000 चतुर्युगी होती है तो। और रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते हो रात्रिम विदो जना, और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वा, अव्यक्ताद मतलब अव्यक्त से, व्यक्तः मतलब जीव, सर्वा सारे, प्रभवंती हरागमे, प्रकट होते हैं अहरागमे दिन के होने पर। जब दिन होता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और रात्रि यागमे प्रलीयन्ते, जब रात्रि होती है तो वे नष्ट हो जाते हैं। तत्रैवा व्यक्त संघ के, तत्र इसमें एव निश्चय ही अव्यक्त अप्रकट संघ के यानी कहे जाते हैं, यानी ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त में, और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में प्रलीन हो जाते हैं। तो उसी बात को यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता 8.17 एंड 18 में कहा गया है कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 युगों के 1000 युग के तुल्य में प्रत्येक 4,30,00,000,000 वर्ष का होता है, और ब्रह्मा की रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। जैसे 4 युग होते हैं, सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, और उसका दुगना द्वापर युग की आयु है 8,64,000 साल, और कलयुग का तिगुना यानी त्रेता युग की आयु है 12,96,000, और सत्युग की आयु है कलयुग का 4 गुना यानी 12,96,000। तो इनको जब हम प्लस करते हैं तो एक चतुर्युगी बनती है 43,20,000, और 43,20,000 को जब 1000 से गुणा करते हैं जो 4,32,00,000,000 वर्ष होते हैं, तो इस ये जो पूरा एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4,30,00,000,000 वर्ष का होता है, और ऐसे 100 वर्षों तक जो है ब्रह्मा जी ऐसे 100 वर्षों तक जीते हैं जिसका एक दिन 1000 चतुर्युगी के बराबर होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जो सामान्यतः भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, अपनी मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा की मुक्ति हो जाती है जब वो 100 साल तक शासन कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जब बनते हैं ना तो अपने 100 जन्मों तक जब कोई वर्णाश्रम धर्म का पूरी तरीके से पालन करता है तब उसे ब्रह्मा की पदवी मिलती है, और वो ब्रह्मा बनकर सृजन करता है और भगवान की शुद्ध सेवा करता है, और मृत्यु के बाद उस ब्रह्मा की मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्मांड यानी ब्रह्मा जी द्वारा नियंत्रित फुटबॉल जैसा गोलाकार पिंड, ये जो पूरा ब्रह्मांड है जिसमें 14 लोक हैं, उसका संहार हो जाता है, और किसी ग्रह विशेष के या कि पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। सारे जितने भी, जब प्रलय होता है ना, जब ब्रह्मा जी के 100 साल कंप्लीट होते हैं, तब सारे जितने भी जीव हैं वो विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लिखित अव्यक्त शब्द का अर्थ ब्रह्मा जी की रात है, जिस बताया गया अव्यक्त रस सिंधु नाम भूतानाम निधनस्य च। निधन हो जाता है जब भूतों का यानी सारे जीव के जब विनाश हो जाता है उसको अव्यक्त कहा गया। जब आंशिक प्रलय होता है और उस विशेष ब्रह्मांड के जीव यहाँ तक के ब्रह्मलोक,
बड़े बड़े समुद्र आदि सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं, देखो सारे जीव विनष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं फिर, जो विराट पुरुष है उनके उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं, और ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृजन होता है। ये आंशिक प्रलय की बात हो रही है। आंशिक प्रलय मतलब जब जब ब्रह्मा का एक कल्प खत्म होता है ना, तो सारे जीव जो हैं वो पेट में चले जाते हैं भगवान के उदर में, और फिर जब भगवान ब्रह्मा जी पुनः जब जागृत होते हैं, दिन होता है, तो पुनः सृजन होता है और भगवान के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। फिर उनको जैसे उन्होंने कल कार्य किया था, ये उनके लिए ऐसा ही है जैसे हम सुबह रात को सोते हैं ना, तो सुबह को उठने के बाद हम फौरन से अपने कार्यों में लग जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि हमारा नया जन्म हुआ है, अभी मुझे क्या भूमिका निभानी, नहीं, हमको सबको पता होता है कि हम क्या हैं, माता हैं, पिता हैं, हमें ड्यूटी पर जाना है, हमें एक प्रसाद बनाना है, मुझे स्कूल जाना है। वास्तव में जो रात्रि होती है वो भी एक प्रकार का निधन ही है, एक प्रकार की मृत्यु ही है जब हम विस्मरण करते हैं। मगर वो जो विस्मरण है वो कितना है, सिर्फ 6 घंटों का है। 6 घंटों तक हम किसी को याद नहीं रखते। रात्रि में एक नया सपना आता है, उसमें हम राजा होते हैं, किसी और देश में रहते हैं, कोई और हमारी पत्नी होती है, कोई संतान होती है, लेकिन पुनः जब जागृत होते हैं तो हमें वापस पुनः वही स्थिति मिलती है। तो इसमें जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तब सारे जीव भगवान के उदर में आराम से सो जाते हैं, और पुनः जब सृष्टि का सृजन होता है तो अपने अपने जितनी भी जो भी उनकी भूमिका है, जिस जिसको जैसा जैसा स्वरूप दिया जाता है, वो अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, मानो वे गहरी निद्रा से जागे हों। चूंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतएव भौतिक जगत का संहार होने पर जीव का अस्तित्व नहीं मिटता। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। न कभी ऐसा हुआ है, न कभी हुआ था, और न ही कभी होगा कि जीव का जन्म हो या उसकी मृत्यु हो। न जायते, कभी जन्म नहीं लेता, न म्रियते, ये तो शरीर बार बार जन्म और प्रलय होता है शरीर का, लेकिन जीव जो है वो सनातन है क्योंकि भगवान का अंश है। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अतएव भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता, लेकिन जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक जीव को एक शरीर त्याग कर पुनः पुनः दूसरा शरीर धारण करना होता है। ये बहुत बड़ी साइंस है भक्तों। जब तक जीव अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता, जब तक भगवत धाम को प्राप्त नहीं करता, तब तक बार बार इस दुखमयी संसार में उसे आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और ये भी कोई गारंटी थोड़े है कि हमें बार बार मनुष्य का इतना सुंदर शरीर मिले। ना जाने किस जन्म में हमको जाना पड़े, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गटर में रेंगने वाला कीड़ा बना दिया जाता है इस जीव को, ना जाने कितने शरीरों में, 84 लाख योनियों में, ना जाने कौन सी योनि में भटकना पड़ता है, और भटकते भटकते बड़ी स्ट्रगल के बाद जीव को ये मनुष्य का जन्म मिलता है। ये मनुष्य जीवन बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, और इस मनुष्य जीवन में ही खाली चांस मिलता है कि हम भगवत धाम को जा सकते हैं, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही केवल हम भगवान की कथा सुनते हैं, केवल भगवान की भक्ति करने का सु अवसर तो ये मनुष्य जीवन है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यह मनुष्य जीवन शरीर के बारंबार होने वाले परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है। ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि जीव बारंबार जन्म मरण की इस श्रृंखला को खत्म करे। ये बार बार जो इस आत्मा को अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है, वो कोई भी योनि में हम इसका समाधान नहीं कर सकते। ये पर जन्म मरण का समाधान, ये दुख और रोग का समाधान केवल इस मनुष्य जन्म में ही संभव है।
और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिसके फलस्वरूप आध्यात्मिक आकाश में स्थान प्राप्त हो सके, यहाँ प्रत्येक वस्तु सनातन आनंदमयी तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। जीव सच्चित आनंद भगवान का स्वरूप है, भगवान का ही अंश है। तो जीव के लिए ये भौतिक जगत सुइटेबल जगह नहीं है, ये भौतिक जगत तो ऐसे ही है जैसे हमको एक जेल में भेज दिया गया है, और जेल में कभी कोई सुविधा नहीं होती है, वहाँ तो केवल कष्ट ही कष्ट होते हैं। इसे बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है जो इस जेल से निकलने का प्रयास करे और वास्तविक अपने अपने स्वरूप के समान स्थान प्राप्त करें। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भगवान के उस आध्यात्मिक आकाश जहाँ पर भगवान रहते हैं उसकी विशेषता बता रहे हैं, जहाँ प्रत्येक वस्तु सनातन है, जीव सनातन है, उसे सनातन वस्तुओं में आनंद आएगा। इस भौतिक जगत में सब अल्प है, कुछ सनातन नहीं है, सब विनष्ट होने वाला, इसलिए जीव को आनंद नहीं दे सकता। जीव आनंदमयी है, इसलिए भगवान का धाम भी आनंदमयी है। तथा जीव चित है, चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, और भगवान का धाम प्रत्येक वस्तु जो है वो आनंद से परिपूर्ण है। दूसरे शब्दों में जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं, और सृजन के समय वे आकार ग्रहण कर लेते हैं। सूक्ष्म जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो भगवान के हृदय में रहते हैं, और फिर जब दोबारा संसार की सृष्टि होती है तो फिर उसी सूक्ष्म शरीर के साथ एक नया शरीर, एक नया भौतिक शरीर हमारी आत्मा को मिलता है, और फिर उसमें दुख भोगना पड़ता है। यदि वो शरीर मनुष्य का मिल गया तो फिर हमारा हम सब का ये कर्तव्य है कि अब अपनी आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकने से बचाना है, और उसका बहुत ही सरल तरीका है। इस कलयुग में तो बहुत ही आसान कर दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान जानते हैं कलयुग के लोगों के पास ना अधिक समय है, ना अधिक बुद्धि है, और ना ही उनका भाग्य अच्छा है, इसलिए आसान कर दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान के पवित्र नाम के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यूँ भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान के पवित्र नाम को जपते जपते, अब हमें सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अब भी यदि हम सीरियस नहीं होंगे तो कब होंगे, है ना। अब जो हम ये जो दूसरे काम करते रहते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, भौतिक वस्तुओं में इतनी आसक्ति, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ये सब करते करते ना जाने कितने जन्म बीत गए। अब इस जन्म में जब हमें भगवान मिले हैं, जब हमें गुरु मिले हैं, जब हमें शास्त्र मिले हैं, जब हमें इतनी सुंदर शिक्षा मिली है, तो हमें अवश्य अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि ना केवल भौतिक जगत के भौतिक प्राणियों का, बल्कि जो श्रेष्ठतम लोग हैं उनका भी निवास स्थान भगवान की चेतना में है। वे कहते हैं धर्मस्य ममतोभ्यं च कुमाराणं भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्। धर्मस्य ममतोभ्यं च कुमाराणं भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्। धर्मराज कहते हैं यमराज को, जो धार्मिक नियमों का नियंता है, धर्मस्य अर्थात धार्मिक नियमों का या यमराज का, मम ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा, तुभ्यम नारद जी को कहते हैं तुम्हारा, च तथा कुमाराणाम यानी चार कुमारों का, और भवस्य भव कहते हैं शिव जी को। ब्रह्मा जी कहते हैं धर्मराज यानी यमराज का, मेरा तुम्हारा चार कुमारों का, और शिव जी का च भी विज्ञानस्य दिव्य ज्ञान का, च सत्वम यानी सत्य का,
परस्य च, यानी भगवान महापुरुष जो है उनको आत्मा यानी चेतना, परायण यानी आश्रय, यानी कि जितने भी संसार में मुख्य मुख्य नाम बताए गए हैं, यमराज हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं, चार कुमार हैं, शिव जी हैं, उन सब का आश्रय स्थान कौन है? भगवान ही है। अनुवाद देखिए, तथा भी उन महापुरुषों की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक सनातन सनंदन सनत कुमार का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि संसार में सबसे श्रेष्ठ जो है वो भगवान है, सब जीव जो है वो भगवान से आश्रित हैं, भगवान की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। ब्रह्मा जी सृजन का कार्य करते हैं भगवान की कृपा से, नारद जी जीवों को कल्याण करते हैं भगवान की कृपा से, चार कुमार जो भगवत कथा करते हैं वो भगवान की कृपा से, शिव जी जो संसार का प्रलय करते हैं वो भगवान की कृपा से। इसलिए हम सबको भगवान के ही आश्रित होना चाहिए, केवल भगवान के ही शरणागत रहकर उनके गुणगान करने चाहिए, उनका पवित्र नाम का जप करना चाहिए, उनकी लीला उनको श्रवण करना चाहिए। अपने प्रेम का एकमात्र केंद्र जो है वो भगवान श्री कृष्ण को बनाना चाहिए। वो प्रत्येक जीव को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, वो प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाले हैं, और उन्हीं की सेवा में रहकर उन्हीं की भक्ति करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आगे कहते हैं, आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ना केवल हम महान पुरुष बल्कि प्रत्येक जीव जो है उनका आश्रय भगवान है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो भगवान के आश्रय में ना हो। प्रत्येक जीव का आधार, उनका उद्गम स्थान, उनका आश्रय वो भगवान ही है। इसे वो श्लोक नंबर 13-16 तक प्रत्येक जीव के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं, अहम् भवान् भवश्चैव त इमे मुनयो क्रजा सुरासुर नरानाका खगामृगसरीसृपा गंधर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरघा पशवः पितरः सिद्धा विद्याधरा शरणा ध्रुमा अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभो कसा ग्रहर्क्षकी तवस्तारा तडितहस्तनयीत्नवा सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्छयत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति अहम् भवान् भवश्चैव त इमे मुनयो ग्रजा सुरासुर नरानाका खगामृग सरीसृपा गंधर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगा पशवः पितरः सिद्धा विद्याधरा शरणा ध्रुमा विद्याधराचारणा ध्रुमा अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभौ कस ग्रहर्क्षकेतवस्तारा तडितस्तनयीत्नव सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवाच्चयात् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिम् अदितिष्ठति।
अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शब्दार्थ देखिए, अहम यानी मैं यानी स्वयं ब्रह्मा जी, भवान मतलब आप यानी नारद जी, भव अर्थात शिव जी, अहम भवान भवश्चैव, च एव मतलब निश्चय ही, त इमे मुनयो अग्रजा, त मतलब वे, इमे मतलब सभी, मुनयो माने जितने भी मुनिगण हैं, अग्रजा तुमसे बड़े, नारद मुनि को बोल रहे हैं कि तुमसे बड़े जितने भी मुनिगण हैं वो भी, सुरा सुर यानी सुर यानी देवता, असुर मतलब राक्षस, और नरा नागा, नरा मतलब मनुष्य, नागा मतलब सर्प, जितने भी नाग लोक के निवासी हैं, खगा मतलब पक्षी, मृग अर्थात पशु, सरीसृपा अर्थात रेंगने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं वो, गंधर्व अप्सरसो यक्षा, गंधर्व अप्सर यानी यक्ष रक्ष भूत, गण उरग, पशव पितृ सिद्धा, अवधरा आचरणा, मतलब भिन्न भिन्न लोकों के जितने भी निवासी हैं, या चाहे वो गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, यक्ष हैं, रक्षक हैं, और पशु हैं, पशव हैं, पितृगण हैं, सिद्धगण हैं, वो सब, द्रुमा अन्येच विविधा, द्रुमा मतलब वनस्पति जगत, जितने भी वृक्ष इत्यादि हैं, अन्य यानी उनके अतिरिक्त विविधा, विभिन्न प्रकार के जीव, जो भी जीव हैं, जो कि जल स्थल नभव कसा, जल मतलब जल में रहते हैं अर्थात मछलियाँ इत्यादि, स्थल यानी जो भूमि पर रहते हैं अर्थात मनुष्य और पशु, और नभव कसा मतलब जो आकाश के निवासी हैं या पक्षी हैं वो, ग्रह वृक्ष, ग्रह मतलब ग्रह या नक्षत्र, वृक्ष मतलब प्रभावशाली नक्षत्र जो हैं ग्रहों में भी जो बड़े हैं, केतव तारा तड़िता, केतव अर्थात पुच्छला तारा, जो जो दुमदार सितारे होते हैं ना वो, और तारा मतलब सितारे, तड़ित अर्थात बिजली, स्तनयत्नत्व अर्थात बादलों का गर्जन, सर्वम हर वस्तु पुरुषः भगवान एव इदम, निश्चय ही ये सब, भूतम सृष्टि, भूव्य भव्य जो रचा जाएगा, भवत जो रचा जा चुका है, मतलब भूत भविष्य और वर्तमान में, पहले जो रचा जा चुका है, अभी जो दिखाई दे रहा है, और भविष्य में जो रचा जाएगा, च यत जो कुछ भी है, तेन इदम वो सब इनके कारण है, जो कुछ भी है, चाहे वो किसी भी लोक का है, किसी भी स्थिति का है, चर है, चराचर है, जो था और जो होगा, वो सब तेन इदम वो सब उनके कारण है, आवृतम ढका हुआ है विश्वम, ये पूरा विश्व जो है, तेने आवृतम विश्वम वितस्तिमा धिष्ठते, वितस्तिम अर्थात एक बालिश जो होता है, बालिश मतलब 9 इंच का एक बालिश होता है, अधितिष्ठम अर्थात स्थित, वो सारा का सारा संसार उस भगवान के अंदर आवृत है, और वो परमात्मा स्वरूप में एक बालिश यानी 9 इंच की से अधिक माप के नहीं होते हैं, तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, हम जैसे साधारण जीवों की साधारण बुद्धि से समझी नहीं जा सकती, भगवान प्रत्येक वस्तु के अंदर स्थित हैं, परंतु भगवान प्रत्येक वस्तु के बाहर भी हैं, भगवान इस सारी सृष्टि को बनाते हैं, इस सारी सृष्टि का पालन करते हैं, उस सारी सृष्टि का लय करते हैं, परंतु इन समस्त कार्यों से वे सदैव विलग रहते हैं, भगवान इस दृश्य जगत का कण कण है, प्रत्येक कण में विद्यमान है, परंतु वह इस दृश्य जगत का हिस्सा नहीं है, ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की, हम किसी भी ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश की बात नहीं है, इसे भगवान कहते हैं आपको मुझे समझने का प्रयास मत करो, केवल मेरा भजन करो, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। बस भगवान को प्रेम से भजन करना है और फिर वो तब ऐसी बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्तिते। भगवान को इस भौतिक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। जब भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनको भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं जिनसे वो उनको समझ सकते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझसे यानी ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव अर्थात शिव जी तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप इत्यादि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां तथा ग्रह, नक्षत्र, पिछला तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के निवासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उर्ग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है सभी सम्मिलित है। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बालिश्यता आकार के रूप में रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। वे अपनी योग माया से विराट रूप में विस्तार करते हैं, जिसमें चराचर जीव की विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त जीवक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती हैं। यानी कि संसार की सारी चर अचार सारी चीज़ें जो है वो भगवान के ही स्वरूप में, जो योग माया के द्वारा भगवान अपना विराट स्वरूप धारण करते हैं, उसके अंदर प्रत्येक वस्तु जो है, जो थी और जो होगी, वो सब सम्मिलित हो जाती है। अतएव ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होती हैं। जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते, यहाँ शिला प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे सोना है, विशाल प्रकार का सोना हो, उसमें से यदि हम बहुत सारे आभूषण बनाते हैं तो वो भी सोने ही हैं। उसी तरह प्रत्येक जीव संसार जो है वो भगवान की ही अभिव्यक्ति है, भगवान के हटकर और कुछ नहीं है। यहाँ शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, दूसरे शब्दों में भगवान वे परम पुरुष हैं जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं और फिर भी वे समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न, पृथक परम सत्ता बने रहते हैं। ये बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण करते हुए भी प्रत्येक वस्तु से बिल्कुल विलग है, भिन्न है, पृथक है, उनकी अलग एक सत्ता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता 9.4 और 5 में उन्हें योगेश्वर कहा गया। 9.4 में भगवान कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेष्ववस्थिता। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। न च मस्तानि भूतानि पश्यमि योगमेश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना। भगवान कहते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं, जरा मेरे इस योगेश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता 9.4 और 5 में भगवान को योगेश्वर कहा गया। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे
सभी रूपों से पृथक और परे रहते हैं। ऋक मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसी की पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकता तथा विभिन्नता के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था और यह अचिंत्य भेद तत्व कहलाता है। ब्रह्मा, नारद तथा अन्य सभी एक ही समय भगवान के साथ एक तथा उनसे पृथक हैं। हम सभी उनके साथ उसी तरह एक हैं जिस तरह सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान है, लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। यह स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उससे असंख्य आभूषण क्यों न बन जाएं, क्योंकि यह राशि पूर्णम है। यदि पूर्णम में से पूर्णम निकाल लिया जाए तो भी परम पूर्णम पूर्णम ही बना रहता है। यह तथ्य हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत्य है, इसलिए भगवान चैतन्य अपने दार्शनिक सिद्धांत की को अचिंत्य अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता तथा भागवत से भी पुष्टि होती है, भगवान चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेद तत्व परम सत्य विषयक पूर्ण दर्शन है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान पूर्ण है। ये पूर्ण का मतलब यह है ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णान पूर्णमुदच्यते। भगवान सदैव पूर्ण रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दृश्य जगत जब भगवान ने अपने अंदर से निकाला है, भगवान ने अपना विस्तार किया, तो भगवान इसी दृश्य जगत का ही एक अंश बनकर रह गए या दृश्य जगत में ही समाप्त हो गए, लिप्त हो गए। नहीं, अपनी सत्ता खो दी, ऐसा नहीं है। भगवान का एक स्वरूप है। भले ही दृश्य जगत के कण कण में भगवान व्याप्त रहते हैं, परंतु फिर भी ओम पूर्णमद पूर्णमिदम वो आध्यात्मिक जगत में पूर्ण है। वो भले संपूर्ण सृष्टि उनसे निकली है, लेकिन वो पूर्ण फिर भी रहते हैं। पूर्णमाधाय, उनमें से जो आधा निकला वो भी पूर्ण है, जो आधा शेष रह गया वो भी पूर्ण है। भगवान अचिंत्य हैं, उनको समझा नहीं जा सकता, इसलिए अचिंत्य कहा चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए हम सबको उस अचिंत्य भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान का पवित्र नाम का जप करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। बस ये सब महानता भगवान की सुनने का एक ही कारण है कि ये जो हृदय भौतिक वस्तुओं में लगा हुआ है, कि ये भौतिक वस्तुएं अच्छी लगती हैं, वो इनका जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाए और जीव को ये लगने लगे कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान से ही निकली है, तो प्रत्येक वस्तु से प्रेम करने से बेहतर है कि मैं भगवान से प्रेम करूं। ये भगवान के विषय में इतना विशद ज्ञान इसीलिए बताया जाता है शास्त्रों में, ताकि जीव का हृदय जो भौतिक वस्तुओं में अटका हुआ है वो भगवान के चरणों की ओर आकर्षित हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।